प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 29 जुलाई 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है रजनीश कुमार, जो दिल्ली से हैं। तो रजनीश, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। सूचना ये है दोस्तों कि शनिवार और रविवार को ये डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आता है, लेकिन कल यानी कि शनिवार को जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो आपको एज इट इज मिलेंगी, जैसे कि रोजाना मिलती रही हैं। और साथ ही शनिवार को आपको कुछ चीजें एडिशनल भी मिलती हैं, जैसे कुरुक्षेत्र और योजना के आपको एक एक आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 4 आर्टिकल्स होंगे, क्योंकि 2 आर्टिकल्स इंग्लिश के होंगे और 2 आर्टिकल हिंदी के होंगे। मित्रों, ठीक इसी तरह से जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो हर वीक प्रोवाइड किया जाता है वह भेजा जाएगा। और साथ ही जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मेंस को आधार बनाकर जो एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है वह वीकली क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि मुझे मेल के जरिए ये पता लगा है कि बहुत से स्टूडेंट अभी वीकली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी अपने आप को प्री एग्जाम में व्यस्त पा रहे हैं, वहां उन्होंने केंद्रित कर लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, केवल एक सप्ताह की बात है, अगले संडे आप इससे मुक्त हो चुके होंगे और फिर आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और अभी जो प्रश्न आप हल नहीं कर पा रहे हैं, जिनके उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं, बेटर होगा कि इसके बाद उनके लिए कोशिश करें। तो मित्रों, ये शुक्रवार की कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। आज के लाइफ मैनेजमेंट में मित्रों, मैं एक सुबह की एक छोटी सी घटना की चर्चा करना चाहूंगा, जो आज ही की घटना है। इस घटना के केंद्र में मित्रों, कुल मिलाकर यह है कि जो आपके देखने का नजरिया होता है, याद रखिए कि वही सबसे बड़ी चीज होती है। चीज में तो कोई बात होती ही नहीं, चीज में कोई बात होती ही नहीं, चीज की अपने आप में कोई वैल्यू भी नहीं होती है। वो सिर्फ आप हैं, आपका नजरिया है जो उन चीजों को या तो मूल्यवान बनाता है या फिर बिल्कुल बेकार बना देता है। हुआ यूं मित्रों कि मैं सुबह सुबह अपने घर के सामने के पार्क में वॉक करने गया। बहुत ही खूबसूरत मौसम था, हल्की हल्की फुहारों के बीच में, तो चेहरे पर बीच बीच में फुहारें भी आकर के अपनी अटखेलियां कर रही थी, शैतानियां कर रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था, जैसे बच्चे की शैतानियां अच्छी लगती हैं। तो मित्रों, हमारे पार्क में कुछ बहुत अच्छे फूल और फलों के पेड़ हैं और पौधे हैं। ये हम लोगों ने जानबूझकर किया हुआ है कि ऐसे ही पेड़ और पौधे लगाए जाएं जिनमें फूल आते हों और जिनमें फल आते हों। अगर हम केवल शो प्लांट लगाएंगे तो फिर हमारे जो पक्षी हैं, तितली हैं, चिड़िया हैं, जो पशु हैं, ये सब कहाँ जाएं, गिलहरी कहाँ जाएंगे। तो उस पार्क में सुबह आप जाइए तो बड़े खूबसूरत तरीके से चिड़ियों की जो जुगलबंदी है, म्यूजिक है, ऑर्केस्ट्रा, वो चलती रहती है। और बट नेचुरल की अभी तो फूल भी काफी खिले हुए हैं। तो मैंने आज पहला दिन ये किया कि मैं कुछ फूल लेकर घर आ गया और मैंने उनको थोड़ी सी एक बड़े से कटोरे में धो करके डाला, कटोरे में थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसमें उन फूलों को सजा दिया। मुझे सजाना वजाना तो नहीं आता, लेकिन सजा कुल इस तरीके से दिया कि सभी फूल, ज्यादातर फूल ऊपर दिखाई दें, यानी कि उनकी जो पंखुड़ियां हैं ऊपर हों। उसमें कनेर के खूबसूरत पीले फूल थे, चंपा के खूबसूरत सफेद और पीले के मिश्रण से जो बना हुआ रंग होता है उसके फूल थे। वैसे उसकी पंखुड़ियां तो पीली ही थी, लेकिन जहां से पंखुड़ियां जुड़ी हुई थी एक दूसरे से, वहां ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने हल्दी का उनको टीका लगा दिया हो, इस तरह का वो रंग था। गुलाबी कलर के बड़े खूबसूरत सदाबहार के फूल थे और साथ ही दोस्तों पारिजात के भी कुछ फूल थे, जो ऐसा लगता है जैसे कि कोई फिरकी जो पहले चलाते थे ना, फिरकी जैसी है, छोटी छोटी फिरकियों जैसी, इन फूलों को सजा करके मैंने रख दिया और बड़ा खूबसूरत वो दिखने लगा, मतलब मुझे तो दिखने लगा कम से कम, जैसे कि हर व्यक्ति को अपनी चीजें अच्छी लगती हैं। तो मित्रों सुबह मेरी पत्नी ने कहा कि ये क्या है, क्या है, मैं कहा कि ये तो फूल है, मैंने तो सोचा था कि तुम तारीफ करोगे सुबह उठने के बाद कि अरे वाह ये तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, तुम प्रश्न कर रही हो। बोले नहीं, ये सुंदर तो दिख रहा है लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप जो दूसरों को फूल तोड़ने के लिए मना करते रहते हैं, डांट देते हैं, नाराज हो जाते हैं, झगड़ने लगते हैं कभी कभी, तो आप ये फूल तोड़ करके ले आए। मैंने कहा तुम्हारी शंका तो बिल्कुल जायज है लेकिन मैं तुमको सूचित करना चाहूंगा, सरकारी भाषा में मैंने कहा आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि मैंने ये फूल तोड़े नहीं है, ये ऑलरेडी टूट कर जमीन पर गिरे हुए थे, मैंने तो उन्हें उठाया है और धो करके फिर इस तस्तरी नुमा कटोरे में सजा दिया है, मैंने फूल तोड़ने की गुस्ताखी मैडम जी बिल्कुल भी नहीं की है। तो दोस्तों मैंने अपनी सफाई दे दी, बात खत्म हो गई, घटना केवल इतनी है। अब आपको लग रहा होगा कि इस घटना में ऐसा क्या है कि सर हमें बता रहे हैं। दोस्तों यही तो बात है, यही मैं दृष्टि की बात कर रहा हूं, यही मैं आपके उस खोजी दिमाग की बात कर रहा हूं, आपके नजरिए के पैनेपन की बात कर रहा हूं कि आप इनमें से तलाशें कि इनमें क्या चीज है। डेफिनेटली कोई ना कोई चीज तो होगी ही जिसकी वजह से मैं इस घटना की चर्चा आपसे कर रहा हूं, और वो भी लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में, और ये जानते हुए भी कि इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को बहुत लोग अपना प्यार देते हैं, सुनते हैं, जिसमें बुजुर्ग से लेकर के और बच्चे तक शामिल हैं। मित्रों अगर आपने मेरी किताब पढ़ी हो लाइफ मंत्रा और ये जो मैंने दो तीन किताबें इस तरह की आई हैं, उसमें मैंने कुल मिलाकर के इसी तरह की छोटी छोटी घटनाओं को जीवन के संदर्भ में विश्लेषित किया है कि जीवन में हमारी घटनाएं तो छोटी छोटी घटती रहती हैं लेकिन वो हमें कितनी बड़ी बड़ी सीख दे जाती हैं, और हम गुरुओं की तलाश में भटकते रहते हैं जबकि हर क्षण गुरु हमारे सामने मौजूद रहता है। मित्रों इसमें क्या सीख है, इसमें प्रकृति को यदि आप गुरु मान लें और इस घटना को संकेत मान लें तो उस प्रकृति रूपी गुरु ने इस घटना के माध्यम से क्या संदेश दिया है, क्या संकेत दिया है। मित्रों संकेत बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है। संकेत कुल मिलाकर के ये है कि सवाल इस बात का नहीं है कि आप कहां से आए हैं, सवाल इस बात का है कि आप अभी कहां हैं। दैट्स ऑल। ये फूल कभी पेड़ों पर लगे हुए होंगे, राइट? तो भी एक बड़े इतरा भी रहे होंगे और लोगों को बड़े खूबसूरत भी लग रहे होंगे, जैसे कि हर चीज का एक वक्त होता है, एक उम्र होती है, इन फूलों की भी एक उम्र है। उम्र पूरी करने के बाद ये टूटकर गिर गए, टूटकर इसलिए गिरे ताकि नए फूल उसमें आ सकें और फूलों के खिलने की जो परंपरा है वो बनी रहे। फूल टूटकर गिर गए, मैं गया उन्हें उठाकर लाया और फिर उन्हें मैंने सजा दिया, धो करके सजा दिया, वो बिल्कुल ताजे हो गए। रात में गिरे होंगे, कुछ तो फूल मेरे देखते देखते ही टपक गए थे तो बट नेचुरल है कि मेरे च्वाइस में वो सबसे पहले आए। मैंने वहां से उठाकर उन्हें धोकर और एक तस्तरी में सजा दिया और थोड़ा सा पानी डालकर उन्हें तैरा भी दिया। मैंने कुल मिलाकर ये किया है। अब जब मेरी पत्नी उठ रही हैं और उन्हें देख रही हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि ये पेड़ों से तोड़कर लाए गए होंगे, फूलों के पौधों से ये तोड़कर लाए गए हैं, यानी कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये ऑलरेडी टूटे हुए थे, यानी कि जमीन से उठाकर लाए गए हैं। इसलिए उन्हें यह नहीं मालूम है क्योंकि उस उन फूलों की पंखुड़ियों पर इस तरह की कोई बात लिखी हुई नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है कि ये जमीन पर टूटे हुए पड़े थे। अगर मैं नहीं बताता तो किसको पता चलता। और मित्रों मुझे तो यह भी लगता है कि अगर पता चल जाए कि ये जमीन पर पड़े हुए फूल हैं और आज इतने खूबसूरत तरीके से यहां मौजूद है तो मैं समझता हूं कि इसमें तो फूल की और महानता है, जिसको कहा जाता है फर्श से अर्श तक, कि जमीन के फूल, जमीन पर पड़े हुए फूल और आज यहां सजे हुए हैं। तो अब मुझसे कौन पूछेगा कि आपने ये तोड़े हुए फूल सजाए हैं या जमीन पर पड़े हुए फूल, कौन पूछेगा? ये तो मेरी पत्नी ने पूछ लिया, क्योंकि वो जानती थी मेरी आदत, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हर कोई जो उस फूल को देखेगा तारीफ करेगा, खुश भी होगा कि वह क्या बात है, और वो जो फूल हैं अपनी जो सुगंध है वो भी फैला रहे होंगे, और अपना जो दृश्यावली जो उन्हें बनानी चाहिए लोगों की आंखों में वो भी पैदा कर रहे होंगे। फूल अपना काम कर रहे हैं और काम हो रहा है। दोस्तों, दूसरी बात, मुझे एक बड़ी विचित्र सी ये जान पड़ती है, और जब मैं फूल तोड़ने के लिए किसी को मना करता हूं, मैं भी डरता रहता हूं कि भैया धर्म का मामला है, कोई नाराज हो जाएगा, लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं। तो मैंने एक दिन इससे कहा कि भैया देखो, जमीन पर इतने अच्छे फूल, इतने सारे फूल पड़े हैं, और जमीन पर भी घास बिछी हुई है, तो आप इनको क्यों नहीं चढ़ा देते? तो बड़े नाराज हो गए, बोले क्या बात करते हैं, आपकी जमीन पर गिरे हुए फूल हम भगवान को चढ़ाएंगे? तो मित्रों, इतने नाराज थे कि मैंने तर्क करना तो ठीक नहीं समझा, मैंने समझ गया था कि तर्क करने से कोई फायदा नहीं होगा, इनके दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि अभी ये सुनने के मूड में ही नहीं है, झगड़ने के मूड में है। तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन मित्रों, कभी इस पर सोच करके तो देखिए, सोच करके तो देखिए, क्या जमीन अपवित्र है? पहली बात, कैसे अपवित्र हो सकती है? जमीन तो सबसे पवित्र है, जमीन इतनी पवित्र तो कोई होती ही नहीं। हम रोज उठकर सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, वो जमीन ही होती है। फिर मित्रों, हम भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं, वो जो चावल चढ़ाते हैं, क्या वो चावल जमीन से उठाए गए चावल नहीं होते हैं? आप नारियल चढ़ा देते हैं, क्या वे नारियल कभी जमीन पर नहीं गिरे होंगे? अगर आप नारियल तोड़ने वाले को जाकर के देखें, तो बिना नारियल को जमीन पर गिराए तोड़ा ही नहीं जा सकता, फिर वो ट्रक में लदे होंगे, फिर वो बोरियों में भरे गए होंगे। आप अगर बाजार से भी खरीद के लाते हैं, तो ढेर में से नारियल खरीद के लाते हैं, वो भी जमीन पर पड़े रहते हैं, तो फिर नारियल क्यों चढ़ाया जा रहा है? दुनिया भर के आप फल चढ़ाते हैं, दुनिया भर के जमीन में पैदा हुई, जमीन के अंदर पैदा हुई चीजें भी आप ईश्वर को चढ़ाते हैं, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर। तो फिर इस फूल ने, बेचारे ने क्या अपराध किया है कि वो जमीन पर गिर गया है तो उसे चढ़ाया नहीं जा सकता? और मुझे लगता है मित्रों कि शायद जमीन पर गिरे हुए फूल को चढ़ाना एक तरीके से दोहरा काम करना है। पहला तो ये है कि हम उन पौधों से, फूलों के उन पौधों की के श्रृंगार को छीन नहीं रहे हैं, उन फूलों के सौंदर्य के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, उन्हें बने रहने दे रहे हैं कि ठीक है, जब तक तुम्हारी उम्र है तुम इन पौधों की शोभा बढ़ाओ। इसके बाद वो फूल टपक जाते हैं, और फिर हम दूसरा काम बड़ा ये कर रहे हैं कि उन टपके हुए फूलों को फिर से ईश्वर के सौंदर्य को समर्पित कर रहे हैं, फिर से ईश्वर को सजा रहे हैं। तो मित्रों, जमीन पर अगर कोई फूल टूट कर गिर गया है, टपक गया है, तो उसे धोकर और ईश्वर को समर्पित कर देना कैसे अधर्म हो सकता है, कैसे पाप हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता। आपकी समझ में आ जाए तो मुझे ईमेल के जरिए बता दीजिएगा। तो मित्रों, ये केवल एक नजरिए का फर्क होता है, याद रखिए। जो मैं खासकर जो बात आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आप चीजों को देख किस दृष्टि से रहे। दोस्तों, आपके देखने की दृष्टि दृश्य में तब्दीलियां कर देते हैं, उसे बदल कर रख देते हैं। फिर आप चाहे उसे नकारात्मक दृष्टि से देखिए, चाहे आप उसे सकारात्मक दृष्टि से देखिए। अगर आप सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, और यदि आप नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो फिर बस जो आप देख रहे हैं उसी का संचार कर रहे हैं, उसमें दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो मित्रों, आज सुबह के इस खुशनुमा घटना को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मुझे लगता है कि शायद इस तरह की घटनाओं और घटनाओं के इस तरह के विश्लेषण आपके अंदर एक कोई नया, फ्रेश, ताजा और बहुत व्यावहारिक नजरिया पैदा कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से के बाद अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मैं तो दो तीन खबरें हैं जिन्हें हम थोड़ा इम्पोर्टेंट मानकर चल सकते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट मानकर चलना होगा। पहली खबर तो नीति आयोग की बैठक को लेकर के थी। आपको मालूम है मित्रों कि ये योजना आयोग को नीति आयोग से रिप्लेस किया गया है, अब उसका नाम नीति आयोग है, और जैसे कि योजना आयोग के जो चेयरमैन प्रधानमंत्री होते थे, अभी भी नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री ही हैं। हाँ, वाइस चेयरमैन के रूप में किसी की नियुक्ति की जाती है, तो अभी आपको मालूम है कि अरविंद पनगाड़िया जी उसके वाइस चेयरमैन हैं। नीति आयोग की बैठक हुई, इसमें दो तीन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है सिविल सर्विस के लिहाज से मित्रों। एक तो यह है कि आपको पहले से भी मालूम होगा कि नीति आयोग से कहा गया है कि वो 15 वर्ष का एक विजन स्टेटमेंट बनाए, विजन डॉक्यूमेंट बनाए, मतलब हम 15 सालों में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और फिर उन्हें टुकड़े टुकड़ों में बांटा जाए। जैसे योजना आयोग 5 साल का अपना प्लान बनाता था, और इसके बाद फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर, जिसे हम पंचवर्ष योजनाएं कहते थे, उसको अब बदला गया है। उनका कहना है कि नहीं, 15 ईयर्स का बनाइए, भले उसको फिर एक एक साल, दो दो साल, पांच पांच साल में बांटा जाए कि हम 2 साल में यहां तक पहुंचेंगे, 5 साल में यहां तक पहुंचेंगे, लेकिन योजना 15 साल का बनाया जाए ताकि हम उसे अचीव कर सके। तो वो आपने न्यूज में सुना। दूसरी बात जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगी मित्रों, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था योजना, उसे नीति आयोग की बैठक में ही उन्होंने कहा कि देश का जो विकास है या देश की जो समस्याएं हैं उनका जो हल है वो टेक्नोलॉजी में है, ये उन्होंने कहा। ये बात लगभग लगभग दुनिया में खुले रूप में कही जा रही है, आमतौर पर सभी लोग इस बात को मानते भी हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इस टेक्नोलॉजी का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे हमारी चेतना हो, तो उससे भयभीत भी है। तो मित्रों, ये जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, बट नेचुरल है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है तो ये हमारा एक राष्ट्रीय वक्तव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब ये हुआ कि जो नीति आयोग जो भी 15 साल की योजना जो बनाएगी उसमें टेक्नोलॉजी केंद्र में होगा। मान लीजिए कि बेरोजगारी कैसे दूर की जाए तो टेक्नोलॉजी होगी, कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए तो टेक्नोलॉजी होगी, आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए तो टेक्नोलॉजी होगी, यानी सभी के केंद्र में टेक्नोलॉजी होगी। दोस्तों, आपको केवल यहां यह सोचना है कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो प्रभुत्व है इसका पूरे के पूरे समाज पर चौतरफा, एक तरफा नहीं चौतरफा क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव आगे चलकर पड़ेगा। जैसे एक बात अब पूरी दुनिया में मतलब लोग चिंतित होने लगे हैं, इवन कि जो अर्थशास्त्री हैं वो भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करती चली जा रही है, मनुष्य गायब हो रहा है और उसका स्थान मशीन ले रही है। जो मशीनें ले रही हैं उसमें दो बहुत ही खतरनाक चीज अब नई शामिल हो गई है, नंबर एक रोबोट और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब रोबोट काम तो कर ही रहे हैं, वो केवल शक्ति के प्रतीक नहीं रह गए हैं, बल्कि उनमें अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाला जाने लगा है, यानी बहुत कुछ काम वो खुद निर्णय लेकर भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करती जा रही है। अब सवाल ये होगा कि अगर ह्यूमन बीइंग इसी तरह से रिप्लेस होता चला गया तो जीडीपी हमारा बढ़ सकता है, समाज का एक विशेष तबका है वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो सकता है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास दो हाथ हैं और इन हाथों को काम चाहिए, मैं पेट को भोजन चाहिए की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि पेट को भोजन प्रोवाइड करने के लिए राज्य अपनी तरफ से व्यवस्थाएं कर दें। जैसे कि आपको ध्यान होगा, एक दो डेढ़ महीने पहले की बात है कि स्विट्जरलैंड में यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी है, तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने अपने नागरिकों से पूछा कि भाई हम आपको जीवन यापन के लिए जो भी जितना पैसा चाहिए हम आपको फ्री प्रोवाइड करने को तैयार हैं, अगर हम आपको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको जीने के जो साधन होने चाहिए वह उपलब्ध कराएंगे, क्या आप इसके लिए रेडी हैं। वहां तो प्रत्यक्ष पद्धति है डेमोक्रेसी की। स्विट्जरलैंड के लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसा पैसे के पीछे उनके स्वाभिमान की बात नहीं थी कि बिना काम किए हम आपकी खैरात पर नहीं पलना चाह रहे हैं, बल्कि बात ये थी कि हम करेंगे क्या, घर में बैठे रहें क्या करें, मतलब आदमी बिना काम के कैसे रह सकता है, उसको इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए। तो वो जब आदमी को आप उस इन्वॉल्वमेंट से हटा देंगे तो फिर उसका वक्त कैसे कटेगा, या उसका जैसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, पता नहीं फिर समाज में किन किस तरह की स्थितियां पैदा होंगी। तो अब टेक्नोलॉजी के प्रभुत्व को आप रोक नहीं सकते, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नो डाउट इसके बहुत ही पॉजिटिव पक्ष भी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल यह है कि इसके इस पर नियंत्रण रख करके, या यूं कह लीजिए कि इसका संतुलन कैसे बनाया जाए, कि मनुष्य और टेक्नोलॉजी के बीच में एक ऐसा संतुलन, एक सामंजस्य बना रहे कि दोनों सर्वाइव करें और समानांतर रूप से आगे बढ़ते रहें। तो मुझे लगता है मित्रों की जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट पर आपको विचार करना चाहिए। ये सिविल सर्विस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे मालूम पड़ता है, भले ही वो ऐसे में ही क्यों ना पूछ लिया जाए। मित्रों, नीति आयोग पहले न्यूज से तो इतनी ही बात है। जो दूसरी जो खबर थी दोस्तों, वो अनिवार्य वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया है। मतलब हर राज्य को अब एक अपना फंड बनाना पड़ेगा और उस फंड से फिर फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। अभी इसकी डिटेल्स न्यूज में भी नहीं थी, उसमें कुछ आंकड़े थे 42,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार राज्यों को देगी और इस तरह से, वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एक विधेयक पारित हुआ है, अब इसके बारे में अखबारों में हमें पढ़ने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है और एनवायरमेंट आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट विधेयक है। उस लिहाज से जब चीजें आएंगी तो फिर हम इस पर बात करेंगे। मित्रों, जो तीसरी खबर थी वो महाश्वेता देवी जी के निधन की खबर थी। तो सबसे पहले तो मैं उस महान आत्मा को, उन महान लेखिका को आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और साथ ही मित्रों, आपने लच्छू महाराज जी के निधन की भी खबर पढ़ी, जो बनारस घराने के बहुत ही मशहूर तबला वादक थे, जिन्हें जनरल स्टडीज में, जिनके बारे में पूछा भी जाता था। अनफॉर्चुनेट पार्ट की वह भी नहीं रहे। तो मित्रों, उनके प्रति भी मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, जहां तक सिविल सर्विस का सवाल है, डायरेक्ट मतलब यूपीएससी के सिविल सर्विस में तो शायद प्रश्न न बने, लेकिन जो स्टेट सिविल सर्विस हैं डेफिनेटली उस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बन सकता है। जो यूपी स्टेट सिविल सर्विस से होंगे उनके लिए लच्छू महाराज के बारे में जानना मुझे लगता है कि अनिवार्य है, क्योंकि वो कोई छोटी हस्ती नहीं थी। और जो वेस्ट बंगाल से हैं उनके लिए महाश्वेता देवी के बारे में जानना। वैसे भी मुझे लगता है कि महाश्वेता देवी जी का जो लेखन है वो चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो महाश्वेता देवी जी के साहित्य के बारे में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा एक छोटा नोट तैयार कर लेना चाहिए। जैसे मित्रों, उनकी दो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिन पर फिल्में बनी है, खासकर 1084 की मां एक जिस पर फिल्म बनी और दूसरी थी रुदाली। रुदाली फिल्म तो मैंने देखी भी थी, 1084 की मां पर नाटक जो हुआ था वह मैंने देखा था, फिल्म तो मैं नहीं देख पाया हूं। और सबसे बड़ी बात जो महाश्वेता देवी जी का जो अद्भुत सम्मान पूरे के पूरे देश में जो था, वो खासकर जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके प्रति उनके मन में बहुत ही गहरा अनुराग था। वो जाती थीं, उनके बीच में रहती थीं, उनसे बातचीत करती थीं और सबसे ज्यादा लिटरेचर उन्होंने उन्हीं के ऊपर ही लिखा है। मतलब उनकी जो करुणा थी इस मायने में अद्भुत थी, और वही सच पूछे तो महाश्वेता देवी की सबसे बड़ी पहचान भी रही है। तो मित्रों, महाश्वेता देवी जी के बारे में आप लोग जरूर एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये तीन खबरें ही आज के AIR कल के AIR न्यूज में मुझे जान पड़ी। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स प्रेस क्लिपिंग्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, आपको ध्यान होगा एक बेनामी लेन देन विधेयक जो पारित हुआ है उसके बारे में, कि इस जब तथ्य सामने आएंगे तब सही मायने में पता लग पाएगा कि यह विधेयक हमारे लिए कितना उपयोगी है। मैं समझता हूं मित्रों, यह विधेयक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मित्रों होता क्या, ये सच पूछे तो हमारे यहां से जो काले धन को खत्म करने की जो कोशिश हो रही है उसी का ही एक पार्ट आप इसे कह सकते हैं। बेनामी संपत्ति का यही मतलब है कि संपत्ति का मालिक तो कोई होता है लेकिन वह अपनी उस संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से खरीद लेता है। इसलिए दूसरे व्यक्ति के नाम से खरीदता है ताकि वो इनकम टैक्स को ना बताना पड़े, उसका हिसाब किताब ना देना पड़े, तो वो एक तरीके से टैक्स की चोरी के लिए ही ये काम किया जाता है। मित्रों मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है कि जब सरकार ने चकबंदी या क्या कहते हैं जमीन एक सिस्टम शुरू किया था कि उन जमींदारों के पास या किसी के पास भी एक पर्टिकुलर मात्रा से अधिक जमीन है तो उनकी वह जमीन सरकार ले लेगी। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 200 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, तो 200 एकड़ से मान लीजिए कि जितनी भी ज्यादा जमीन है वो सरकार की हो जाएगी। ये एक नियम बना था, ये मिसेस गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी क्योंकि वो सोशलिज्म को बहुत ज्यादा उस विचार की थी तो उन्होंने ऐसा नियम निकाला। तो उस समय क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े जमींदार सामंत किसान थे तो उन्होंने 200 एकड़ तो अपने नाम रख ली क्योंकि वो तो रख सकते थे, तो बाकी जो जमीन थी उसको वो किसी दूसरों के नाम पर उन्होंने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जो बेचने के रूप में उन्होंने दिखा दिया पर्टिकुलर डेट से पहले अपने नौकर चाकर को, आदिवासियों के नाम पर। इस तरह की बहुत सी चीजें हुई और आज भी बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो अब सरकार के मतलब सरकार उन्हें जब्त कर सकती थी लेकिन उस समय जो रूल्स रेगुलेशन थे इससे जुड़े हुए जो कानून थे वो थोड़े से इतने जटिल थे कि सरकार को अधिकार इस तरह से नहीं मिल पाते थे कि वो उन्हें जब्त कर ले। इस कानून में अब जो बना है मित्रों इसने सरकार को सीधे सीधे वैधानिक और प्रशासनिक शक्तियां दे दी हैं कि वह बेनामी संपत्ति को जब्त कर सकती है और वह सरकार की संपत्ति हो जाएगी। हां परिवार के सदस्यों के नाम पर यदि किसी ने संपत्ति ली है तो उसे बेनामी नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के नाम पर भी आपने ले लिया और फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से आपने उस पर अधिकार कर लिया तो वो बात अब खत्म हो जाएगी। और फिर ये भी उसमें व्यवस्था की गई है कि यदि इसको लेकर के कोई विवाद होगा तो उसके लिए पूरा अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसके अपील कोर्ट बनाई गई है, तो वो अलग से उसकी व्यवस्था भी की गई है ताकि जब ऐसे मामले हों तो फिर कोर्ट कचहरी में ना जाएं, वो अलग अलग ट्रिब्यूनल में उसका निपटारा हो जाए। वैसे भी दोस्तों जब आप न्यायालय के सुधार के बारे में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि खासकर कोर्ट में जो सबसे ज्यादा मामले चलते हैं सरकार के अगेंस्ट तो चलते ही हैं, दूसरे मामले जमीन जायदाद के सबसे ज्यादा होते हैं, जमीनों के मामले सबसे अधिक कोर्ट में चलते हैं। कौन मालिक है, ये है, उसने बेचा, उसने खरीदा लेकिन उसने नहीं दिया, उसने 5 लोगों को बेच दिया, इस तरह के ढेर सारे संकट आपको सुनने को मिलते हैं। तो ये संकट धीरे धीरे खत्म होंगे। देखिए जब जमीन के सुधार की जब बात होती है, भूमि सुधार कानून जब हमारे यहां लागू किया गया तो उस भूमि सुधार कानून में ठीक है चकबंदी वगैरह की जो चीजें की गई लेकिन मित्रों उसमें जो टाइटल्स थे मतलब कि जो मालिकाना हक जमीन पर जिसका होना चाहिए वो बहुत स्पष्ट नहीं हो सका था, इसीलिए विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो अब इस बेनामी संपत्ति विधेयक के आने के बाद से उम्मीद की जा रही है कि जमीन के क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी आएगी। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने तो पूरे के पूरे अपने स्टेट के जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए हैं कि अगर कोई भी आप जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई बेचना चाहता है या उसका देखना चाहते हैं आपकी उसका मालिक कौन है तो आप ऑनलाइन नेट पर जाइए और बकायदे आपको टाइटल पता लग जाएगा कि इस जमीन का वास्तव में मालिक कौन है। तो ये उस क्षेत्र के सुधार है और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के डिस्प्यूट को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि जमीन के मालिकाना के मामले में मालिकाना हक के मामले में ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो मित्रों इसको लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक अच्छी जानकारी दी गई है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं और इकोनॉमिक टाइम्स ने एक एडिटोरियल कमेंट भी इस पर लिखा है, वह भी आपको प्रेस क्लिपिंग्स के अंतर्गत पढ़ने को मिल जाएगा। दोस्तों कल मैंने एक और भी आपसे विधेयक की बात की थी जो बच्चों को लेकर के जो विधेयक आया है। इस विधेयक के बारे में जब मैं डिबेट में सुन रहा था डीडी न्यूज पर तब भी लोगों को लग रहा था कि ये एक तरीके से पहले का विधेयक ज्यादा प्रगतिशील था, यह विधेयक उसको पीछे ले जाने की कोशिश है और अभी जब मैं टाइम इसके जनसत्ता का एक एडिटोरियल पढ़ रहा था तो उसमें भी उन्होंने यही मेंशन किया है कि जैसा कि कुछ बहुत से दूसरे दल वालों ने कहा भी है, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कि यह एक तरीके से पीछे ले जाने वाला कदम है, पीछे ले जाने वाला कदम। और उसके लिए उन्होंने जो प्रोविजन दिया है जिसकी चर्चा हमने कल की थी कि बच्चे अपने व्यावसायिक जो पारिवारिक होंगे, मतलब पारिवारिक जो व्यवसाय होंगे उसमें काम कर सकते हैं, बस फर्क इतना ही है कि स्कूल टाइम के बाद, और जो पारिवारिक पेशा है उसमें रिश्तेदार भी शामिल है, मतलब ये जरूरी नहीं कि माता पिता का ही व्यवसाय हो, रिश्तेदारों के व्यवसाय में भी काम कर सकते हैं। तो लोगों का मानना है कि ये जो एक प्रोविजन है ये एक तरीके से वो छेद है, वो छिद्र है, वो दरार है जिसका फायदा उठा करके लोग फिर से बच्चों का शोषण करेंगे और बाल श्रम, बाल मजदूरी भारत में जारी रहेगी जैसे कि अभी वो चलती चली आ रही है। तो मित्रों, इसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट होगा, अब आप जब भी इस विधेयक के बारे में कुछ भी ऐसी एनालिटिकल चीजें पढ़ने को आपको मिले तो प्लीज आप उन पर ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पर जो सामाजिक या यू कह लीजिए कि सोशल जस्टिस से जो जुड़े हुए मामले हैं उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मित्रों, और जो दूसरे टॉपिक्स पर क्लिपिंग्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब उन्हें देख लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ नाम है मित्रों, चंचल अग्रवाल मथुरा यूपी से, किशन मेवादा पालिताना गुजरात से, धर्मवीर भारत यादव, रितेश साहू बैतूल मध्य प्रदेश से, सजल जैन सागर मध्य प्रदेश से, शशिकला चौहान कल्याण मुंबई से, मनीष नगुलवार और संदीप जांडू गोदामदी राजस्थान से। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, सावन का महीना आ चुका है, चारों ओर हरियाली अब तक फैल चुकी है, बहुत ही खुशनुमा मौसम है, बहुत ही एनर्जेटिक, मैं इसे बड़ा ऊर्जावान मौसम मानता हूं। हालांकि मुझे मालूम है कि जब बादल छाए हुए हों तो वैज्ञानिक दृष्टि से तो वो कम ऊर्जा का वक्त माना जाता है क्योंकि ऊर्जा का जो स्रोत सूर्य है वो गायब है, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरह के बादल छाए हुए हों और उन छाए हुए बादलों में पूरी प्रकृति पर जब पानी के छींटे पड़ रहे हों तो जैसे सो के उठने के बाद जैसे ही आप आंख में पानी के छींटे अपनी आंखों पर मारते हैं, चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं, आप में ताजगी आ जाती है, ठीक उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा बरसात का जो मौसम होता है, बरसात के दिन भी होते हैं लगातार, बादल और बारिश के जरिए हम सब में ताजगी पैदा करता रहता है। तो मित्रों, ये जो आपके दो दिन हैं ये बस इसी तरह की ताजगी वाले बड़े खुशनुमा तरीके से बीतें, ये शुभकामना मेरी आप सबके लिए है। दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी मित्रों, तब तक के लिए आप सबसे मैं अनुमति चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।